समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्व को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। परिक्रमा के आज के संस्करण में मैं हूं आपके साथ अतहर सईद और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो अतहर, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 एफएम गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट अतहर सईद। Well, listeners, reggae music and Bob Marley gained immense global popularity. Yes, Bob Marley, by combining unique musical elements, powerful social messaging and rebellious artistry, made reggae music famous. Today, we observe his death anniversary. We will talk about him later in our program, but first we begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की।
वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी अनाउंसेस ट्रांसफर ऑफ लैंड टू बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग, ऑल्सो लॉन्चेस आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम इन द स्टेट।
केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की।
SBI research says country's economy remains resilient amid global headwinds. Projects growth is 6.6% in the current fiscal.
IPL cricket mein aaj shaam Punjab Kings ka muqabla Delhi Capitals se.
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Technology Day. Well, Athar, today we bring you a very special extending program on the occasion of National Technology Day. Every year on the 11th of May, India celebrates this important day to honor the remarkable achievements of our scientists, engineers, innovators and researchers who continue to shape the nation's future through science and technology. And today's program is a journey through India's scientific milestones, inspiring innovations and the dreams that are transforming a nation into a global technological powerhouse. And dear listeners, National Technology Day is observed every year to commemorate one of the proudest moments in India's scientific history. On this day in 1998, India successfully conducted a series of nuclear tests in Pokhran, Rajasthan, under Operation Shakti. And this test demonstrated India's scientific capability and technological strength before the world.
निश्चित रूप से शाबाशियां उन वैज्ञानिकों को जो कि आज के दिन को सफल और सार्थक बनाते हैं। अभिषेक, इस सफल मिशन ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और भारतीय वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों के दृढ़ संकल्प, बुद्धिमत्ता और समर्पण को दर्शाया। ये केवल एक वैज्ञानिक घटना मात्र नहीं थी, बल्कि ये राष्ट्रीय आत्मविश्वास का एक क्षण था। ये परीक्षण भारत के कुछ बेहतरीन वैज्ञानिक के कुशल नेतृत्व में किए गए, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे, जो लाखों युवा भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। यह अभियान असाधारण सटीकता, गोपनीयता और टीम वर्क के साथ संचालित किया गया था। वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में अथक परिश्रम किया और यह सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी स्वदेशी विशेषज्ञता के माध्यम से विश्व स्तरीय तकनीकी सफलता हासिल कर सकता है।
Yes, but Arthur and listeners, that's not all. National Technology Day also commemorates another historic achievement, the successful flight of India's first indigenous aircraft, Hansa 3. And this aircraft represented India's growing capabilities in aviation technology and self-reliance in aerospace engineering. And the same period also witnessed important advancements in missile development and defense research, strengthening India's position globally. And so every year, National Technology Day reminds us that innovation, science, and determination can transform the destiny of a nation. So, dear listeners, have you ever imagined life without technology? No smartphones, no internet, no online classes, no digital banking, no GPS navigation, no advanced medical treatments. Well, Athar, can you imagine such a scenario?
हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने अभिषेक. प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो आज टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर हिस्से में गहराई से जुड़ी हुई है. आप महसूस करके देखें कि जिस पल हम सुबह उठकर अपना फोन देखते हैं, अपना स्मार्टफोन देखते हैं, उस पल से लेकर रात को बल्ब बुझने तक, यानी बल्ब के ऑफ होने तक, टेक्नोलॉजी हर जगह हमारे आसपास मौजूद है. किसान की अगर बात करें तो किसान अब मौसम का पूर्वानुमान बताने वाले ऐप्स और स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं. डॉक्टर्स रोबोट की मदद से जटिल सर्जरी करने में सक्षम नजर आते हैं. छात्र दूर दराज के गांवों से वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं. डिजिटल पेमेंट ने खरीदारी को बेहद आसान और बेहद तेज बना दिया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो व्यवसायों, अस्पतालों, परिवहन प्रणालियों और यहां तक कि आपदा प्रबंधन टीमों की भी वो मदद करता है. अभिषेक, टेक्नोलॉजी महज मशीनों के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन को बेहतर बनाने के बारे में है. ये समय बचाती है, अवसर पैदा करती है, लोगों को जोड़ती है और समस्याओं को हल करती है. आज के दिन हम देखते हैं कि भारत तेजी से दुनिया के अग्रणी इनोवेशन हब में से एक बनता जा रहा है. है कि नहीं अभिषेक?
Absolutely, Athar and friends, India's journey in science and technology has been truly remarkable. From launching satellites into space to becoming a global IT leader, India has shown the world what determination and talent can achieve. Now let us take a look at some milestones that made every Indian proud. Athar, you know, India Space Agency, Indian Space Research Organization, successfully launched missions like Chandrayaan 3, which made India the first nation to land near the moon's south pole. Then, of course, the Mars Orbiter mission, making India first Asian nation to reach Mars orbit successfully on its first attempt. Do you remember?
बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक. प्रौद्योगिकी के सहारे भारत लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है. अब भारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, डिजिटल इनोवेशन और रिसर्च का एक वैश्विक केंद्र भी बन गया है. आज भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक दुनिया की कुछ सबसे उन्नत तकनीकों में सफलतापूर्वक अपना योगदान दे रहे हैं. सिलिकॉन वैली से लेकर अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं तक भारतीय प्रतिभा हर जगह अपनी चमक बिखेर रही है. और शताब्दी भविष्य तो और भी उज्ज्वल नजर आता है. क्यों अभिषेक?
Yes, Athar, and India is now focusing strongly on artificial intelligence, which is of course the in thing, isn't it? And then quantum computing, semiconductor manufacturing, biotechnology, renewable energy, electric vehicles, robotics, cyber security, green technologies. Well, this sector is expected to transform the world in the coming decades, and India is preparing to lead.
बिल्कुल अभिषेक. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन वैज्ञानिकों, उन इनोवेटर्स को श्रद्धांजलि दी जिनके समर्पण ने देश को मजबूत बनाया है. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 1998 के सफल पोखरण परीक्षणों के पीछे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को गर्व के साथ याद करता है. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रौद्योगिकी एक प्रमुख स्तंभ बन गई है. उन्होंने कहा कि इनोवेशन अवसरों का विस्तार कर रहा है, विकास की गति बढ़ा रहा है और सभी क्षेत्रों में नागरिकों को सशक्त बना रहा है.
Yes, and he also emphasized the government's continued focus on encouraging research, supporting innovation, empowering young talent, developing indigenous technologies and creating solutions that benefit society.
अभिषेक, एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिकों को राष्ट्र के गौरव और आत्मसम्मान का सच्चा निर्माता बताया. श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण नवाचार को गति देने, अवसरों का विस्तार करने और विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास में योगदान देने में प्रौद्योगिकी एक प्रमुख स्तंभ बन गई है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का निरंतर ध्यान प्रतिभा को सशक्त बनाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और ऐसे समाधान तैयार करने पर केंद्रित है जो राष्ट्रीय प्रगति और नागरिकों की आकांक्षाओं दोनों को पूरा करे. देखा जाए तो वास्तव में हर तकनीकी सफलता के पीछे वर्षों का मौन समर्पण, कड़ी मेहनत और त्याग छिपा होता है. अभिषेक.
Yes, and now something different, Athar. Now, this dear young listeners, this segment is especially for you. National Technology Day is not only celebrating achievements of the past, it is also about inspiring the innovators of tomorrow. Who knows, the next revolutionary app, maybe the next scientific breakthrough, the next life-saving invention could come from one of you listening today. Curiosity is the beginning of innovation, Athar. And every great inventor once started with a simple question. Why? How? What if? And India's future depends on young minds that are creative, courageous and determined.
और अभिषेक, आज हम देखते हैं कि देश भर के छात्र रोबोट बना रहे हैं, नए नए एप्स डिजाइन कर रहे हैं, विज्ञान मेलों में हिस्सा ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर रहे हैं और स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। कई स्कूल और कॉलेज प्रयोगशालाओं, हैकाथॉन और शोध परियोजनाओं के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रौद्योगिकी ऐसे दरवाजे खोल रही है अभिषेक, जिनके बारे में पिछली पीढ़ियां केवल सपना ही देख सकती थी, और आज के डिजिटल दौर में ज्ञान हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है।
Yes, so dear students, here are some simple tips. Read more, ask questions, experiment boldly, learn continuously, and never stop dreaming. Because innovation begins with imagination. And listeners, one of the most beautiful aspects of technology is its ability to improve society. Technology can help solve real-world problems. For example, clean energy technologies help fight climate change. Medical technologies improve healthcare access. Educational apps bring learning to remote villages. Disaster warning systems save lives. Digital governance increases transparency and efficiency. And Athar, today India is using technology not just for economic growth, but also for social transformation. And the true success of innovation lies not only in profit or power, but in making life better for people. And that is the spirit of national that the National Technology Day celebrates.
बिल्कुल अभिषेक, आज जब हम प्रगति और इनोवेशन का जश्न मना रहे हैं, तो आइए हम उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को भी एक पल रुककर सलाम करें जिन्होंने अपना जीवन ज्ञान और खोज के लिए समर्पित कर दिया है। कई लोग लेबोरेटरी के दरवाजों के पीछे चुपचाप काम करते हैं, कई लोग मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में वर्षों बिता देते हैं, कई लोग विज्ञान की उन्नति के लिए अपने आराम का त्याग कर देते हैं, तभी उनका योगदान राष्ट्रों के भविष्य को आकार देता है। भारत की वैज्ञानिक यात्रा ऐसे दूरदर्शी लोगों के प्रयासों से बनी है। मिसाल के तौर पर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सतीश धवन, ऐसे कई सारे नाम हैं। उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अभिषेक,
यस, सो टू कंक्लूड आवर डिस्कशन, अथर, साइंस इज द लाइट दैट रिमूव्स डार्कनेस एंड टेक्नोलॉजी इज द ब्रिज that carries humanity towards a better future. We wish all our listeners a very happy and inspiring National Technology Day. Keep innovating, keep learning, keep dreaming. Jai Hind.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है आज। अभिषेक,
एंड वी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम विद अ स्टोरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एंड इन वेस्ट बंगाल सुबेंदु अधिकारी टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एज चीफ मिनिस्टर ऑन सैटरडे। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट।
In a historic shift for West Bengal, Shubhendu Adhikari took the oath of office as Chief Minister on Saturday at the Brigade Parade Ground in Kolkata. The ceremony coincided with Pochishe Boishakh, the birth anniversary of Rabindranath Tagore, adding cultural weight to the political transition. Shubhendu Adhikari, who defeated former Chief Minister Mamata Banerjee in Bhavanipur Assembly constituency, leads the state's first BJP government. Among others who took oath as Minister designate included Dilip Ghosh and Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Khudiram Turu and Nishit Pramanik. The event was a major show of strength for the NDA, attended by Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and several others. Also numerous chief ministers from NDA and BJP ruled states and party president Nitin Naveen alongside other leaders were present on the occasion. The program began with a floral tribute to Tagore, signaling a blend of regional pride and national unity. Sushmita Mondol, Akashbani, Kolkata.
Kolkata ke baad ab rukh karte hain Agartala ka, Abhishek.
Yes, and it began as a dream, fragile, ambitious and deeply rooted in a passion for culture. Well, in 1972, a group of young enthusiasts in Agartala set out on a journey under the banner of Chandanir, envisioning a platform for diverse cultural expressions. And like many dreams, the path was not easy. The initiative struggled to find its footing and eventually slipped into prolonged pause. Yet the hunger remained quite persistent and powerful. And then in 1976, Arthur, that inner calling found his voice once again with renewed energy and conviction. Chandanir returned this time with a vibrant celebration of the birth anniversary of Rabindranath Tagore on the 25th of Boishakh. We have a report.
What began then was not merely an event, but an extraordinary journey of collective homage to a towering beacon of light. It was in many ways a pilgrimage, an artistic surrender to a luminous legacy. From that year onward, Agartala witnessed something remarkable. Almost every prominent cultural organization in the city came together, united by a shared reverence for Tagore. The occasion itself carried deep emotional weight. After all, Tripura has long embraced Tagore, even during its royal era, with an open heart. Over time, this celebration evolved into a multi-generational cultural confluence. For four generations, the people of Tripura have been touched by the brilliance of Tagore's literacy and artistic contributions. His seven visits to the region have left a lasting imprint, shaping its cultural identity in subtle yet profound ways. Through the decades, Chandanir's annual program became a symbol of that connection. Each year, cultural groups from across Agartala and even the state as well would gather, offering a rich tapestry of performances, songs, recitations, dance, and drama, all inspired by Tagore's creations. It was not just about remembrance, it was about rediscovery.
Chandanir, a cultural platform, organizes Kobi Pranam in the morning of Pochishe Boishakh every year since 1976. Half a century is complete and this year is 51st year. Like earlier years, this year also Kobi Pranam witnessed rich harvest of performances based on Tagore's music, dance, poetry and plays.
As time moved forward, so did the spirit of the arrangement. Even in today's democratic and evolving Tripura, the legacy of Tagore continues to shine with dignity. The celebrations have adapted, expanded and embraced change without ever losing their essence. Crossing the milestone of 50 years, this year marks the 51st arrangement of Chandanir's Rabindra Jayanti celebration, the Kobi Pranam. For many, it is a journey through memory. For Parikrama, Suman Bhattacharji, Akashbani, Agartala.
And from Tripura, we now turn attention to the picturesque state of Goa.
बिल्कुल, गोवा केंद्र सरकार के खनन सुधारों को लागू करने वाले प्रमुख राज्य में शामिल हो गया है। 2015 में शुरू हुई नई नीलामी व्यवस्था के बाद राज्य में 6 खनिज ब्लॉक चालू हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट।
केंद्र सरकार की नई नीलामी नीति के बाद गोवा के खनन क्षेत्र में तेजी देखने को मिल रही है। खनन मंत्रालय के अनुसार राज्य में नीलाम 6 खनिज ब्लॉक अब चालू हो चुके हैं। इससे देश भर में खनिज उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ इस्पात, सीमेंट और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में भी मजबूती मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया, मंजूरियों में तेजी और केंद्र व राज्य सरकारों के बेहतर तालमेल से खदानों को जल्द शुरू करने में मदद मिली है। देश भर में 2015 से अब तक 101 नीलाम खनिज ब्लॉक चालू हो चुके हैं। ओडिशा 34 ब्लॉक के साथ सबसे आगे है, जबकि कर्नाटक और गुजरात भी प्रमुख राज्यों में शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से खनिज आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी पणजी से निखिल उपाध्याय।
और अब चलते हैं तमिलनाडु।
यस, एंड द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द वालानाडु ब्लैक बक सैंक्चुअरी ऑन द पलायमकोट्टई तूतुकुड़ी फोर लेन नेशनल हाईवे साउथ तमिलनाडु are in full swing in filling tanks, ponds with water to stop the animals straying into the nearby villages. In search of food and water, we have more from a correspondent.
With the scorching summer has dried up almost all the water bodies and the deep borewells within the Vallanadu Black Buck Sanctuary in Palayamkottai Thoothukudi 4-lane National Highway, the Department of Forest has started up filling up the ponds and the concrete tanks within this park regularly to stop the animals straying into the nearby villages in search of food and water. The Vallanadu Black Buck Sanctuary, established in 1987 on 2054 hectares on the Palayamkottai Thoothukudi 4-lane National Highway, is a home for blackbucks, samba deer, spotted deer, jackal, fox, anteater, rabbits, hedgehogs, different birds including peafowls, a range of reptiles including cobra, crane, Russell swiper, etc., butterflies, insects and moths. To save this delicate ecosystem and quench the thirst of the birds and animals, the Department of Forest has sunk deep boreholes at a few places within the sanctuary where solar-powered pumps have been fitted with the automatic controllers. The pump will get switched on automatically once the water level touches the optimum level. Moreover, small check dams have been built and ponds dug at vantage points within the sanctuary to store the water whenever it rains. As the sweltering summer has dried up almost all these water resources, including the deep borewells, the forest department has started filling up the concrete tanks inside the sanctuary with water so that the animals would not go out of the sanctuary boundary in search of food and water, where a range of threats are in store. If the animals, especially the black bucks, Samba deer or the spotted deer, come out of the sanctuary for water, it may be hunted down by the stray dogs or even the poachers. Hence, the tanks built within the sanctuary are being filled regularly with water. The forest department has designated personnel to monitor every day the availability of water in the ground level tanks and ponds. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashvani, Tiruchirappalli.
और आइए अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल.
And we start off with football, and football India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under 17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under 17 Women's World Cup, marking the country's first ever qualification to a FIFA World Cup.
IPL क्रिकेट की बात करें तो आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा.
Yes, and moving on to some business news. Benchmark domestic equity indices fell around 1.5% today as fresh flare-up in US and Iran tensions led to a rise in crude oil prices and dampened investor sentiment. The BSE Sensex plunged 1,313 points to close at 76,015, and the NSE Nifty lost 360 points to settle at 23,816. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्व की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन.
In today's episode, we remember freedom fighter Asif Ali, who was born on the 11th of May 1888 at Bijnor, Uttar Pradesh. Husband of famous freedom fighter Aruna Asif Ali, he was the first Indian ambassador to the United States and also served as the governor of Odisha.
Asif Ali gave up his practice of law during the non-cooperation movement in the early 1920s and returned to India from England. He took part in the nationalist movement and used his legal acumen to help nationalist leaders in courtrooms. Revolutionaries Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were defended by Asif Ali.
Asif Ali was imprisoned during the Quit India movement in 1942 and was detained in Ahmednagar Fort Jail. After his release, he served as the Minister for Railways in the interim government formed in August 1946. In that capacity, one of his first actions was the elimination supply of potable water on railway platforms like Hindupani and Muslim Pani. Both in his personal and political life, Ali sought to discard religious differences and promote harmony.
Ali was regarded as an important statesman. He was appointed as the governor of Odisha twice in 1948 and 1951. He played an important diplomatic role post-independence and served as the first Indian ambassador to the United States of America. Subsequently, he was appointed as the ambassador to Switzerland. Asif Ali passed away during his tenure as the ambassador to Switzerland in Bern on the 2nd of April 1953. We salute the great Indian.
We also remember revolutionary freedom fighter Basant Kumar Biswas, who was martyred on the 11th of May 1915. He was inspired by the great transnational patriot Rash Bihari Bose.
Biswas was born in 1892 in Nadia district of West Bengal. As a student, he took active part in the Swadeshi agitation. In 1907, he left his studies and took up a job in 1910 at a Swadeshi cloth store in Uttarpara, but left it also only to join the national movement. Biswas joined a revolutionary group and used to provide bombs in northern India. Biswas accompanied Rash Bihari Bose to Dehradun in the disguise of his servant Haridas. He reached Lahore along with Rash Bihari in October 1912.
Biswas took part in a plot to throw a bomb on Lord Harding on the 23rd of December 1912 when he was passing through Chandni Chowk, Delhi in a state procession marking the inauguration of Delhi as a capital of India. After the failed attempt at killing the Viceroy, Biswas left Delhi and went to Bengal, from where he was arrested on the 26th of February 1914. He was charged with conspiracy to kill Viceroy Harding. He was executed on the 11th of May 1915. We salute the great martyr.
We also remember revolutionary freedom fighter Manindranath Ukil, who died on the 11th of May 1936. Born in 1911 in Dhaka, now in Bangladesh, Manindranath was a member of the Jugantar Party and took active part in nationalist movements against British rule. He was arrested for his revolutionary activities on the 26th of September 1930 and died in internment on the 11th of May 1936.
Yes, and Bob Marley passed on this day in 1981. He was a legendary Jamaican singer, songwriter, guitarist who became the global face of reggae music and a Rastafarian icon. Renowned for hits like One Love, Three Little Birds and No Woman, No Cry, he pioneered a unique sound fusing reggae, ska and rock steady, promoting peace, love and social justice. Let's listen into a bit of his hit track, One Love. Yes, and also Eric Burdon was born on this day in 1941. He's a renowned English singer-songwriter, best known as the lead vocalist of The Animals and the leading British invasion band and the funk band War, and famed for his deep, powerful blues rock voice and intense performances. He was ranked 57th in Rolling Stone's 100 Greatest Singers of All Time and inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1994. Let's listen in to the band's hit track, House of the Rising Sun.
A house in New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.
Yes, and we're also remembering Salvador Dali, who was born on this day in 1904. He was a renowned Spanish surrealist artist, celebrated for his technical skill, bizarre dreamlike imagery, and flamboyant personality. Best known for his 1931 masterpiece, The Persistence of Memory, featuring melting clocks, he explored subconscious themes through painting, sculpture, film, and fashion.
आज ही के दिन इस दुनिया में आए सागर सरहदी, वे हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक थे. उन्होंने कभी कभी चांदनी सिलसिला, नूरी दीवाना, कहो ना प्यार है जैसी कई बेहतरीन फिल्मों की पटकथा लिखी. आइए उन्हीं की फिल्म कभी कभी से ये गीत सुनते हैं.
कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए.
और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अतहर सईद और अभिषेक मुखोपाध्याय को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com. नमस्कार.
नमस्कार.